हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। दोपहर का वक्त था जब वेदांत बेचैनी से अपने केबिन में चक्कर लगा रहा था, क्योंकि अब विहा का कॉलेज से आने का वक्त हो गया था और वेदांत जल्द से जल्द विहा से मिलकर कोई सल्यूशन ढूंढना चाहता था अपने अजीबोगरीब गिफ्ट को वापस मंगवाने का। कुछ पल के इंतजार के बाद आखिर वेदांत के केबिन का दरवाज़ा खोला और वेदांत लगभग दौड़ते हुए दरवाज़ा खोल ही गया और सामने उसकी उम्मीद के अनुसार ही विहा खड़ी थी, जिसका पूरा चेहरा थकान से भरा हुआ था। विहा ने अपने हाथ में पकड़ा बैग वेदांत के हाथों में थमाते हुए कहा, आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, ऊपर से टीचर ने मुझे इतना डांटा है। इतना बोलते हुए विहा अंदर गई और सोफे पर धड़ाम से बैठते हुए अपना सर सोफे के हेडरेस्ट पर टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। वेदांत ने गहरी सांस ली और फिर अपने हाथ में पड़ा बैग टेबल पर रखा और जल्दी से टेबल पर रखे जग से पानी का ग्लास भरा। उसके बाद वो विहा के पास बैठकर आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, कौन से टीचर ने डांट लगाई है तुम्हें और क्या कहा है? विहा ने अपनी थकी हुई आंखों को खोलकर वेदांत को देखा और फिर उसके पास सरकते हुए अपना सर उसके कंधे पर टिकाते हुए वो ग्लास अपने हाथ में ले लिया, फिर पानी पीकर बोली, नहीं, इतना भी नहीं डांटा, बस ये बोला है कि थोड़ा सीरियस हो जाओ, जो कुछ दिनों में एग्जाम आने वाले हैं तुम्हारे। इतना बोलकर विहा ने अपने हाथ में पकड़ा ग्लास टेबल पर वापस रख दिया। वेदांत उसकी उंगलियों में मौजूद रिंग को छूते हुए धीरे से बोला, एक्चुअली मुझे भी तुम्हारी हेल्प चाहिए थी, मैं बहुत परेशान हूँ कल से। विहा ने अपना चेहरा ऊपर की तरफ करते हुए वेदांत को देखकर आंखें छोटी करते हुए कहा, आखिर ऐसा कौन सा काम है जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? मुझे नहीं लगता इस दुनिया में ऐसा कोई काम बना है जिसमें आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत हो, आप तो बिल्कुल परफेक्ट हो। ना चाहते हुए भी वेदांत के परेशान चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई और उसने अपना हाथ उठाकर विहा के गुलाबी गाल को धीरे से सहलाते हुए कहा, नहीं बेटा जी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चलता है और तुम्हारे पास इसका सल्यूशन ज़रूर मौजूद हो सकता है, पर फिलहाल बात यह है कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा था तुम्हारे घर पर, मुझे लगा तुम वापस नहीं आने वाली हो, मुझसे गुस्सा हो। विहा हैरानी से आंखें बड़ी की और अपना सर उसके कंधे से हटाते हुए बोली, सीरियसली? वेदांत ने हाँ में सर हिलाया तो विहा खुश होते हुए उसके गले लगकर बोली, थैंक यू सो मच, और मैं रात को बस यही सोच रही थी कि आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ मैं ही आपको स्पेशल फील करवाना चाहती थी। वेदांत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बच्चा पूरी बात सुनो, मेरी असली परेशानी तो मैंने तुम्हें बताई ही नहीं है। विहा उससे अलग होते हुए बोली, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, अगर मैं अभी उसे नहीं देख पाई तो क्या हुआ, मैं बाद में देख लूंगी। वेदांत ने गहरी सांस लेकर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए धीरे से बोला, एक्चुअली उसके अंदर मैंने तुम्हारे लिए शॉर्ट ड्रेस भेजी थी और मैचिंग अंडरगारमेंट्स भी, और भी बहुत कुछ अजीब था जो ससुर जी ने देख लिया है, अब मैं सोच रहा हूँ मैं उनका सामना कैसे करूँगा। ये सुनकर विहा के चेहरे का भी रंग उड़ गया और उसने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, ओ गॉड, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, आपको पता है मैंने तो कभी शॉर्ट ड्रेस पहनी भी नहीं है और पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है। वेदांत ने बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए रोनी आवाज में कहा, रियली सॉरी, मुझे लगा था तुम उसे रिसीव करोगी और तुम उसे देखकर खुश हो जाओगी, तुम जब पहले दिन ऑफिस में आई थी तब तुमने मुझे बताया था कि यहाँ सब लोगों के जैसे कपड़े हैं वैसे कपड़े तुम्हें भी पहन के आना है यहाँ, तो बस इसीलिए मैंने वो सब भेजा था, अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। विहा ने थोड़ी देर की खामोशी के बाद धीरे से कहा, थैंक यू सो मच मेरी छोटी छोटी बेफिजूल की बातों को याद रखने के लिए, और आप परेशान मत होइए, पापा कुछ दिनों में भूल जाएंगे उसे और फिर जब मैं जाऊंगी तब ले आऊंगी उन्हें, वैसे भी उनको पता है कि आप मॉडर्न फैमिली से हैं, उनकी तरह नहीं है तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। वेदांत ने जल्दी से कहा, पर मैंने अनाही से कॉल करवाया था, तब मम्मी जी बोल रही थी कि वो बहुत गुस्से में हैं, हमने कारण तो नहीं पूछा पर शायद वही कारण था, उन्होंने गिफ्ट खोलकर देखा था उसी वक्त हमने कॉल किया था। विहा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो इसलिए गुस्से में थे क्योंकि जब मैं यहाँ आ रही थी वो घर पर मौजूद नहीं थे और मैं उनसे बिना मिले ही आ गई, क्योंकि अगर मैं थोड़ा और इंतज़ार करती उनका तो मुझे यहाँ पहुँचने में रात के 12 बज जाते, इस वजह से गुस्सा है, मैंने उनसे बात की थी। ये सुनकर वेदांत के सर से मानो बड़ा सा पत्थर उठ गया हो। वो खुश होते हुए जल्दी से विहा की कमर को पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठाते हुए अपने गले लगाकर बोला, थैंक यू सो मच टोमेटो, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ तुमने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, वरना मैं कितनी देर से बस यही सोच रहा था कि ससुर जी गुस्से में क्या करेंगे, कहीं हमारे रिश्ते को लेकर कुछ न बोल दें। तुमने मेरी सारी परेशानी हल कर दी। इतना बोलकर उसने फिर विहा को खुद से थोड़ा सा अलग किया और उसके गाल को चूमते हुए बोला, थैंक यू टोमेटो। पिछले कुछ पलों में वेदांत विहा को बिल्कुल किसी नकली गुड़िया की तरह कभी अपनी बाहों में भर रहा था तो कभी खुद से दूर कर रहा था। विहा बस सुन होकर उसे देख रही थी और जैसे ही उसने अपने गाल पर वेदांत के होठों को महसूस किया उसके पूरे शरीर में मानो करंट लग गया हो, तो जल्दी से बार बार पलके झपकाते हुए अपनी लड़खड़ाती जुबान में बोली, वेदांत आप ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। मुझे सुनकर वेदांत ने उसे छोड़ने के बजाय खुद से और भी ज्यादा चिपका लिया और फिर उसकी गर्दन को पीछे से पकड़ते हुए उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, नहीं टमाटो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ, आई एम रियली सॉरी बट यू आर माइन। इतना बोलते हुए वेदांत ने विहा के उन गुलाबी होठों को देखा जो घबराहट के मारे कांप रहे थे और वेदांत को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। अगले ही पल वेदांत ने झुकते हुए उसके होठों को अपने मुंह में भर लिया और सुकून से अपनी आंखें बंद करते हुए उसे किस करने लगा। विहा ने झटपटाते हुए अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर वेदांत के सीने पर रखी और उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, पर उसकी इन मासूम कोशिशों से वेदांत को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने कंधे पर रखे और अपने दोनों हाथों को उसकी पीठ पर ले जाते हुए उसे अपने और भी करीब कर लिया। अब उन दोनों के बीच से हवा जाने जितना फासला भी नहीं बचा था। विहा के माथे पर पसीने की बूंदें थीं और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था जैसे अभी सीना चीरकर बाहर आ जाएगा। वहीं वेदांत की आंखें सुकून से बंद थीं। ये उसकी जिंदगी का पहला किस था और उसके दिल को बिल्कुल सर्दी के मौसम जितनी ठंडक दे रहा था। विहा ने फिर से वेदांत को पीछे धकेलने की कोशिश की पर उसकी उंगलियां जाने क्यों उसके कंधों पर जम गईं। उसने अपनी पलकों को कसकर भींच लिया। उसके भीतर डर और चाहत का अजीब सा संगम हो रहा था। वेदांत के होंठ कभी बेहद नरमी से उसके होठों पर टिकते तो कभी हल्की कसावट से उसे अपने एहसास में डुबो लेते। उसके होठों की नमी में विहा का सारा प्रतिरोध धीरे धीरे पिघलने लगा। उसका शरीर अब ढीला पड़ रहा था। कमरे का सन्नाटा और गहरा हो गया। बाहर से आती हल्की हवा खिड़की के पर्दे हिलाती रही पर दोनों के लिए दुनिया जैसे थम गई थी। विहा की उंगलियां अब उसकी शर्ट के कॉलर को हल्के हल्के पकड़े हुए थीं। उसकी पहली कोशिशें जो उसे दूर धकेलने की थीं अब अनजाने में उसे और पास खींच रही थीं। कुछ पल बाद विहा की सांसें बुरी तरह उखड़ रही थीं, जिसे महसूस कर वेदांत ने हल्के से अपनी पकड़ ढीली की, लेकिन उसके होंठ अब भी विहा के होठों पर ठहरे हुए थे। उसने सिर्फ उसकी सांसों को महसूस करने का मौका दिया और विहा ने कांपते हुए एक गहरी सांस भरी। अगले ही पल विहा ने अपना सर वेदांत के कंधे पर टिका दिया और गहरी गहरी सांसें लेने लगी।